नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए कैलेंडर को लेकर बिहार में बवाल मच गया है। इसमें मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों और उर्दू स्कूलों में शुक्रवार का अवकाश घोषित किया गया है। इतना ही नहीं, जन्माष्टमी और रामनवमी जैसे त्योहारों का अवकाश भी रद्द कर दिया गया है। इस फैसले के बाद बीजेपी समेत विपक्षी दलों ने नीतीश कुमार सरकार की मंशा पर निशाना साधा है। बीजेपी नेताओं ने नीतीश सरकार पर बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाने का आरोप लगाया है। बिहार के शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक उर्दू स्कूलों में शुक्रवार यानी जुमे के दिन अवकाश घोषित किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी ज्यादा होगी वहां शुक्रवार को अवकाश रहेगा। वहीं राखी, तीज, रामनवमी, महाशिवरात्रि, जीतिया और जन्माष्टमी की छुट्टियां खत्म कर दी गई हैं। शिक्षा विभाग के फैसले के बाद बीजेपी ने भी इसे लेकर सवाल उठाए हैं। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने हिंदू विरोधी चेहरा दिखाते हुए यह फैसला लिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को कहा कि सभी बचाव कर्मी सुरंग में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए पूरी शिद्दत एवं मेहनत के साथ काम में जुटे हुए हैं और अब तक मलबे के अंदर कुल 52 मीटर पाइप डाला जा चुका है। सिल क्यारा पहुंचकर सुरंग में पिछले 16 दिनों से फंसे श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए जारी बचाव अभियान का जायजा लेने के बाद मीडिया से बातचीत में धामी ने कहा कि अब तक कुल 52 मीटर पाइप को अंदर डाल दिया गया है। उन्होंने बताया कि अंदर फंसे सभी श्रमिक सकुशल और स्वस्थ हैं। धामी ने कहा कि राहत एवं बचाव कार्य में जुटे श्रमिक, इंजीनियर, अधिकारी तथा विशेषज्ञ सभी लोग पूरी ऊर्जा और सकारात्मक भाव के साथ कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री घटनास्थल के निकट स्थित मातली में बनाए गए अस्थाई कैंप कार्यालय से बचाव अभियान पर नजर बनाए हुए हैं। तिरुवनंतपुरम की एक विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने सोमवार को एक महिला को 40 साल की जेल की सजा सुनाई। आरोपी महिला ने अपने प्रेमी को अपनी ही 7 वर्षीय बेटी का यौन शोषण करने की अनुमति दे दी थी। तिरुवनंतपुरम फास्ट ट्रैक विशेष न्यायाधीश आर रेखा ने मार्च 2018 से सितंबर 2019 तक हुई इस घटना में महिला पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक आर एस विजय मोहन ने कहा कि मां को केवल 20 साल की सजा काटनी होगी, उसको कई तरह की सजाएं मिली हैं जो साथ साथ चलेंगी। उन्होंने कहा कि मुकदमा अकेले मां के खिलाफ ही चलाया गया है क्योंकि मुख्य आरोपी शिशुपालन ने मुकदमे के दौरान आत्महत्या कर ली थी। महिला को सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि पीड़िता का बचपन उसकी मां के कारण नष्ट हो गया, जिस पर उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र मंगलवार को शुरू हो गया, जिसमें सुचारू कार्यवाही के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों सहित सदन के सभी सदस्यों से सहयोग मांगा। मुख्यमंत्री ने सत्र शुरू होने से पहले पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सदन का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना और इसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए विपक्ष भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि सत्ता पक्ष। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट के साथ साथ अन्य विधायी मुद्दे भी पटल पर रखे जाएंगे। आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने गरिमामय तरीके से कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए पिछले 6 वर्षों में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है। संवाद के माध्यम से लोकतंत्र के सच्चे लोकाचार के अनुसार गरिमापूर्ण तरीके से कार्यवाही का संचालन हुआ है। कोविड-19 के बाद पूरी दुनिया एक बार फिर से चीन में फैले रहस्यमयी बुखार और निमोनिया से सतर्क नजर आ रही है। भारत सरकार ने भी कोविड के बाद चीन से आने वाली इस तरह की खबरों को लेकर काफी सतर्कता बरती है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि बच्चों में सांस से जुड़ी किसी भी तकलीफ के सामने आने के बाद तुरंत जांच कराएं, इसकी पूरी जानकारी भी केंद्र सरकार को दी जाए। चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को स्थानीय अधिकारियों से क्लिनिकों की संख्या बढ़ाने का आग्रह किया है ताकि बुखार से जुड़े मामलों से तेजी से निपटा जा सके। चीन से बढ़ते हुए बुखार के मामलों को लेकर जब काफी खबरें सामने आने लगीं तो पिछले हफ्ते ये एक वैश्विक मुद्दा बन गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों में न्यूमोनिया के बढ़ते मामलों को लेकर जानकारी मांगी है। इजराइल और हमास अपने युद्ध विराम समझौते की अवधि को 2 और दिन बढ़ाने पर सोमवार को सहमत हो गए, जिससे आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाकर रखे गए लोगों और इजराइल के जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली जारी रहने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। हमास ने मूल रूप से 4 दिवसीय युद्ध विराम समझौते के तहत अदला बदली के 4थे दौर में 11 इजरायली महिलाओं एवं बच्चों को रिहा किया, जो सोमवार रात को इजराइल पहुंचे। इसके अलावा इजराइल द्वारा रिहा किए गए 33 फलस्तीनी कैदी मंगलवार तड़के वेस्ट बैंक के रामल्ला में पहुंचे थे। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।